के हदीस टेस्ट के। माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा किया, काफ़ी मुझे खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों का जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आती जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। जो पहला टेस्ट था उससे दूसरा बेहतर था, उसके बाद वाला बेहतर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, यानी आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस नॉलेज से आपके इर्द गिर्द वालों को भी फायदा होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है अपने सबक में कुरान के नूर अगर आपके हाथ में हो तो उसकी रोशनी से इर्द गिर्द वाले भी फायदा उठाते हैं। तो अब आपके पास चूंकि ये इल्म आया है, अल्लाह ताला ने ही आपको अता किया है, इसकी तौफीक दी है, तो अब ये नहीं होना चाहिए कि इर्द गिर्द वाले अंधेरे में रहें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जितने टेस्ट अभी तक आप दे चुके हैं ना, जितने टेस्ट अभी तक आप दे चुके हैं, कोशिश करें इनको जैसे एक सवाल जवाब के अंदाज में लिख लें, ठीक है। क्योंकि इसमें तो ट्रू फॉल्स भी हैं और ये सब है ना, तो आप इनको सवाल जवाब के अंदाज में लिख के और आप इंशाल्लाह ताला इनको शेयर करें अपने बच्चों के साथ, और शेयर करने के बाद आप उनको ऐसा एक बताएं कि मैं आपको क्विज देती हूँ, और क्विज में जो जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा, जो ज्यादा जवाब देगा। इस तरह से करके कम से कम अपने बच्चों तक तो जरूर पहुंचाएं। इसके अलावा जो आपकी दोस्तें हैं जो आप साथ हदीस क्लास में नहीं है मौजूद, उनको भी ये सवाल जवाब के अंदाज में करके उनसे पूछें, जो जवाब उनके गलत होंगे, कम से कम ये होगा कि आपकी रहनुमाई से इंशाल्लाह ताला वो उन चीजों को भी सीख जाएंगे। इसी तरह बाज ऐसे भी लोग हैं जो आपके दोस्त अहबाब में होंगे जो ना कुरान से जुड़े हुए ना हदीस से, तो उन तक भी इंशाल्लाह मैसेज पहुंच जाएगा। क्योंकि मैंने कोशिश की है कि अगर आप देखें, पूरी लुलु वल मरजान तो नहीं किसी को पढ़ा सकती, मगर ये जो टेस्ट हैं इनमें कोशिश यही मेरी रही है कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जो प्रैक्टिकल लाइफ से मुतल्लिक हो, आपके अमल से मुतल्लिक हो, यानी रोजमर्रा जिंदगी से हो। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि बहुत कोई याद करने वाली चीजें हों, जो कि इस तरह से हों, मतलब कोई शजरा नसब नहीं है इसमें, कोई ऐसी रटने वाली चीज नहीं है। ये वो बेसिक चीजें हैं जो हर एक को पता होनी चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर नमाज से मुतालिक कितने सारे अहकाम हैं जो आपने अब सीखे हैं, और ये ऐसे बेसिक अहकाम हैं जो अगर आपको नहीं पता तो आपकी नमाज खराब हो सकती है, आपकी नमाज का वो जाहिर हो सकता है। अगर मसलन मिसाल के तौर पे, या जैसे हमने सूत्रे के अहकाम पढ़े, या और बहुत सारे अहकाम हैं जो हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं, जमात से मुतल्लिक हैं, अजान से मुतल्लिक हैं, इनसे मुतल्लिक हैं, ये छोटी-छोटी बेसिक छोटी-छोटी चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए, तो इनको प्लीज जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा भी जो आप लोग अपने रिव्यू सेशंस में, क्योंकि मैं तो देखो इतना लंबा टेस्ट नहीं बना सकती, जो चीदा चीदा चीजें हैं वो निकाल के, बहुत कोशिश तो ये हो ज्यादा से ज्यादा आप लोग फायदा उठा सके टेस्ट से भी, मगर जो आपको और सवाल आप लोगों ने रिव्यूज में किए हैं और आपको लगता है कि ये भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, फायदा दे सकते हैं लोगों को, तो वो भी आप क्वेश्चन आंसर की सूरत में एक क्विज सा तैयार कर लें, और इस क्विज को लाइक हमने जो पहला टेस्ट किया था उसका कर लें, फिर दूसरे टेस्ट का, फिर तीसरे का, इस तरह से करके 3-4 हफ्तों में जो हमारे 4 टेस्ट हुए आप इसको मुकम्मल कर लीजिए रमजान से पहले पहले, ताकि कम से कम ये आपका एक सदका जारिया हो जाए इंशाल्लाह ताला, और रमजान में लोग इससे फायदा भी उठा सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आप सब समझ लें, अपना होमवर्क समझ लें, असाइनमेंट समझ लें, मेरी रिक्वेस्ट समझ लें आप लोगों से। मैं अगली दफा इंशाल्लाह ताला चाहूंगी कि आप लोग मुझे बताएं कि आप में से कितने लोगों ने ऐसी कोशिश शुरू कर दी है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपके पास बने बनाए टेस्ट मौजूद हैं, आपको कुछ बस ज्यादा किसी और कुछ भी नहीं करना, तो इन्हीं को बस सवाल जवाब की सूरत में कर लें, ठीक है ना, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है इसमें। आप बस अपने इल्म को आगे तक पहुंचाइए, हर एक हदीस की कोर्स में नहीं आएगा, हर एक यहाँ पे आके ये इतना नहीं सीखेगा, मगर सिंपल बातें आपके तवसुत से अगर आगे पहुंच जाए तो इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला मुफ्त में अजर कमाने का एक तरीका है आपके लिए। चलें जी, अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. आप लोगों को मैंने टेस्ट देने से पहले कहा था कि जब आप टेस्ट के बाद वाले हफ्ते में आएंगे तो मैं आपसे दुआए नूर सुनूंगी। आप लोगों ने याद किया दुआए नूर? ये दुआ कब पढ़नी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए? बाज जगह पे आता है कि दो सुन्नत के बाद पढ़नी चाहिए, जो फजर के बाद हम जो सुन्नतें पढ़ते हैं, या फिर आप किसी और वक्त में भी पढ़ सकते हैं रात में। और बहुत प्यारी दुआ है। इस दुआ को करने के बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो दुआ होगी ना, ये अगली दुआ है जो हदीस नंबर 440 में अल्लाहुम्म लकल हम्दु अंता नूरुस समावाति वल अर्ध वलकल हम्दु अंता कय्यूमुस समावाति वल अर्ध, ये वाली दुआ जब आप तहज्जुद में उठते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो इसलिए इस दुआ को हम तहज्जुद के लिए इंशाल्लाह ताला हम ये वाली तो मखसूस उस वक्त के लिए हम रखेंगे कि हम इसको उस वक्त करें। और इस दुआ में भी एक दफा इसे गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। पहली और दूसरी तीसरी लाइनों में बहुत सिमिलैरिटी है, यानी एक जैसी है। देखें, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता, यहाँ तक तीनों में एक जैसी बात है। एक में है फिर नूरु समावाति वल अर्ध, फिर वलकल हम्दु अंता कय्यूमु समावाति वल अर्ध, फिर तीसरी है वलकल हम्दु अंता रब्बु समावाति वल अर्ध। ठीक है, तो ये तीन लाइनें आपको याद होनी चाहिए कि दिस कैन बी यूज एज इस्तफ्ताह। तो नहीं, ये तो नहीं मुझे ऐसा पता कि ऐसी कोई इस तरह की बात, मुझे इस चीज का नहीं पता। यही पता है कि तहज्जुद के वक्त ये पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये तीनों लाइनें आपको आ गई कि पहली में नूर है, दूसरी में कय्यूम और तीसरी में रब्बु समावाति वल अर्ध। हर एक में वर्डिंग सारी बिल्कुल सेम है, लकल हम्दु अंता और एंड में असमावाति वल अर्थ है। ये समझ आ गई ना? और जब तीसरी लाइन बोल देंगे तो फिर वमन फी हिन्न, और इनमें जो भी है, अंतल हक, और फिर अल्लाह ताला की अपनी जात से शुरू करना कि तू हक है, फिर तेरा वादा हक है, फिर तेरी बात हक है, फिर तेरी मुलाकात हक है, फिर जन्नत, फिर आग और नबी, और जो कयामत का दिन है वो हक है। अब ये हक वाले सारी आप एक लिस्ट बना लें कि सबसे पहले तो जाहिर है अल्लाह की जात से शुरू करनी है। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा ये कह रहे हैं ताकि आपको याद करना आसान हो जाएगा। इस तरह से थ्री पार्ट्स में हम इस दुआ को करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया, जो पहली तीन लाइन है उसमें नूर कय्यूम और रब है। ठीक है, उसके बाद जब हम अगला पार्ट सेकेंड पार्ट करेंगे तो अल्लाह तू हक है, इसमें सब के एंड में हक 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 आएगा। तो तू हक है, फिर तेरा वादा हक है, फिर तेरी बात हक है, फिर तेरी मुलाकात हक है, फिर जन्नत और जहन्नम और नबी और कयामत का दिन असा जो है वो सबसे एंड में है। ठीक है, वो हक है। उसके बाद फिर आप जो दुआ मतलब अपनी आजी जो आपने शो करनी है वो थर्ड पार्ट में आती है। अल्लाहुम्मा लक असलम तू, मैं अल्लाह तेरे आगे मैंने सबमिट किया अपने आप को, इस्लाम ले आया, मतलब यानी कि अपने आप को झुका दिया। अभी का आमन तू, ईमान, फिर अपने बात अपने ईमान की बात की कि मैं तेरे पर ईमान भी ले आया। फिर अलैक का तवक्कल तू, नंबर थ्री बात अल्लाह तेरे पर तवक्कल भी किया। वह इलैक का अनब तू, और तेरी तरफ रुजू भी किया, इनाबत होती है ना, अल्लाह अकबर। और वह भी क्या खासम तू, और खिसाम अलदुल खिसाम, ये सब हमने पढ़ा हुआ कुरान में, ये अल्फाज तो आपके लिए नए नहीं है। और तेरे ही आगे मैं अपने झगड़े को भी पेश करता हूँ। वह इलैक हाकम तू, और तुझसे ही अपने फैसला भी चाहता हूँ, हकम तुझे ही बनाती हूँ। फ़ग़फ़िर ली मा कद्दम तू वा मा अख़र, तो फिर आप उसके बाद मग़फ़िरत मांगे। अमा असरर तू वा मा आलन तू, अल्लाह जो पहले किया और जो बाद में किया, और जो यानी अगले पिछले जिनको कहते हैं, और जो छुप के किए और जो ज़ाहिरन किए, वो भी सारे गुना, ऐलानिया होता है ना, और इसरार। अंत इलाही, तू मेरा इलाह है, ला इलाहा इल्ला हू, ये है। तो थ्री पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया। अल्लाह मैं तेरे ही आगे, यानी अपने हर चीज के लिए अपना फैसला तेरे आगे रखती हूँ। ठीक है, अपना मुकदमा तेरे आगे रखती हूँ। अब ये जो थ्री पार्ट्स हैं, अब इनको आप इसी तरह अपने जहन में रखते हुए याद करें। मैं आपसे 2 वीक्स के बाद सुनूंगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक नहीं सुनूंगी, उसके बाद वाले वीक में सुनूंगी। अब उम्मीद है इससे आपको आसानी हो गई होगी। लेकिन पहली दुआ जो है वो वाली दुआ तो आप रात में किसी वक्त भी मांग सकते हैं, तो इसलिए उस दुआ को तो आप वैसे ही याद करें इस तरह से कि अल्लाह, ये जो दुआए नूर है इसको आप ऐसे ही याद करें कि किसी वक्त नहीं। अगर आप नहीं उठते रात के वक्त तो फिर आप सुन्नतों के बाद ये दुआ मांगिए, ठीक है? अच्छा जी, अब मुझे ये दुआ नाज़नीन आप सुनाइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا. اللهم في سمعي نورا.
Directions now. Directions. Directions. من किस direction से start करेंगे सबसे पहले?
اللهم
नहीं, बस अल्लाहुम्मा एक दफा, नहीं नहीं पहले राइट से हर चीज शुरू होती है ना।
तहती
और सामने भी, सामने नहीं, शॉर्ट वाली में नहीं, सिर्फ अब आप डायरेक्शंस बताएंगी और अपने सामने सामने अमामी अमामी इमाम होता है ना, इमाम इमाम सामने होता है ना, अमामी नूरा
अमामी नूरा।
अगर आप वो दूसरी वाली करेंगी तो उसमें अल्लाहुम आतीनी नूरा, अगर ये वाली इतनी करें जो ब्रीफ में फिर वजह अली नूरा, इसमें दोबारा अल्लाहुम्मा नहीं कहना, ठीक है? हाँ, अल्लाह मेरे लिए नूर कर दे, बस ये है, इससे इसके ऊपर खत्म होती है ये दुआ। तो अगर आप इतनी करना चाहें, अगर आप ज्यादा करना चाहें तो फिर तो आप वो दूसरी करेंगी, लेकिन आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, मेरा ख्याल में होनी चाहिए ये दुआ। मेरे ख्याल मैंने एक दफा सुनी भी थी और हमारे पास क्लास में भी
है, इससे बड़ी भी है
जी, क्लास में भी चलाते थे। बल्कि ये दोनों दुआएं आपको मिल जाएंगी यूट्यूब, नूर कह के सर्च कीजिएगा या इस तरह से ना। तो और मिशारी ने ये बहुत ही खूबसूरत ये दुआ भी, जो अगली वाली दुआ मैं आपको बता रही हूँ ना, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व तनूरु समावात वला, ये आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आप मिशारी की आवाज में आपको आपको इंशाल्लाह इतनी जल्दी याद हो जाएगी ना, आप इसको लगा के छोड़ दें और अपने कामों में भी लगे रहेंगे तो आप देखिएगा आपकी इट्स सो ब्यूटिफुल कि आपके खुद ब खुद जुबान पे आ जाएगी, ठीक है? इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये दुआएं करनी, मुझे तो लगता है एक हफ्ते में इंशाल्लाह आप लोगों को याद हो जाएगी। जज़ाकअल्लाह खैरन। अच्छा, अब मुझे सुनाएंगी कुलसुम, आप सुनाइए ये दुआ।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहु जी।
अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ऊपर और नीचे
नूरा,
लेकिन फी में नहीं कहना, इमामी से पहले फी नहीं कहना, وَأَمَامِي نُورًا وَجَعَلْ لِي نُورًا, ठीक है? और इसमें याद रखिएगा आप लोग, शाबाश। अच्छा, इसमें ये याद रखिएगा कि अगर तो आपने पॉज करना है फिर आप कहेंगे नूरा, और अगर आपने पॉज नहीं करना यानी वहां पे वक्फ नहीं करना तो फिर आगे से जोड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल وَأَيَّمِينِي نُورًا وَأَيَّسَارِي نُورًا, ठीक है? अगर मैंने वक्फ किया यहाँ पे तो फिर मैंने नूरा कहा, लेकिन मैंने पीछे वाले में वक्फ नहीं किया तो मैंने कहा वह आई यमीनी नूरम, ठीक है? या तो अगले से जोड़े या फिर वहां पे वक्फ करें, ठीक है ना? तो दोनों नहीं कर सकते कि आप ये कहें वह आई यमीनी नूरन, वह आई ये सारी नूरन, ऐसे नहीं, ठीक है? डायरेक्शंस का आप ध्यान रखें ना, तीन तीन चीजें हैं, पहले दिल है और आंखें हैं और कान है, और उसके बाद डायरेक्शंस है। राइट से हमेशा डायरेक्शन शुरू होती है ना। ठीक है, अच्छा जी एक और कोई मुझे सुना दे, तो फिर उसके बाद फिर मैं। अच्छा अम्बीन आप सुनाए जी।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम जी।
हेलो।
जी सुनाए।
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يمينه نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا
سامنے سامنے فرنٹ پہ
وامامي نورا واجعل لي نورا
شاباش ٹھیک ہے یعنی تین آپ نے وہ دیکھ لیے کہ قلب اور بصارت اور سماعت اور اس کے بعد پھر ڈائریکشنز شروع کر دیں تو آپ جب ظاہر ہے رائٹ کریں گے تو لیفٹ بھی کریں گے اوپر کریں گے پھر نیچے بھی کریں گے پھر فرنٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر کہیں گے وجعلنی نورا ٹھیک ہے صحیح ہے الحمدللہ اچھا جی اب میں آپ سے کوسچن پوچھ لیتی ہوں جی عشرت آپ بتائیے آ جائیں آپ اپنے اس سے جو آپ ہم نے یہاں تک کیا تھا میرے خیال میں کہ آدمی جب سوتا ہے تو شیطان اس کان میں پیشاب کر دیتا ہے اگر وہ فجر کے لیے نہیں اٹھتا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ شیطان وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ شیطان جو تین گرے لگاتا ہے تو ہر گرا کے اوپر وہ کیا کہتا ہے جب ہر گرا پہ کیا چیز کہتا ہے انسان کو
سو جا ابھی اس سے تو مجھے پکا تو یاد نہیں پھر بھی آپ کا اندازہ ہو رہا ہے سوجا کہ ابھی وقت ہے نماز کا یا بہت تھکا ہوا ہے
ہاں ابھی بہت رات باقی ہے ٹھیک ہے سوجا ابھی رات بہت رات باقی ہے یہ میں نے سوال اس لیے پوچھا جزاک اللہ خیرا نشرت کہ یہ میں نے اس لیے سوال آپ سے پوچھا کہ آپ دیکھنا سبحان اللہ واقعی یعنی ہمارا ایمان تو ہے ہی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں تو ظاہر ہے سچی باتیں لیکن آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر جب ہم کبھی رات کو اٹھتے ہیں نا جیسے آپ بڑے تھکے ہوئے ہیں فجر کا بھی ٹائم ہو جائے تو کہتے ہیں اچھا ابھی ابھی بس تھوڑا سا ابھی سو جاتے ہیں ابھی ہے ٹائم ابھی ہے ٹائم وہ کون بول رہا ہے وہ شیطان بول رہا ہے ہوتا ہے نا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے اچھا تہجد کے لیے بھی آپ نے اٹھنا ہوگا اچھا 5 منٹ ابھی ابھی ہے ابھی ٹائم ہے تو صحیح وہ ٹائم ہے تو صحیح ابھی رات بہت باقی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے سو جا ابھی رات بہت باقی ہے یعنی ابھی ہے ٹائم ابھی تھوڑی ٹائم جا رہا ہے تھوڑی دیر میں پڑھ لیتی بس 5 منٹ اور 5 منٹ اور وہ جو 5 منٹ اور ہے نا وہ ابھی رات بہت باقی ہے یہ اسی کی انٹرپریٹیشن ہے نا کہ ابھی ہے ٹائم کس طرح کی سبحان اللہ یعنی ہم سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کبھی نہیں ہم یہ دیکھتے کہ یہ نہیں نہیں بس یعنی ویسے انسان اسی وقت اٹھ جائے تو وہ الگ بات ہے لیکن جب انسان اپنا الارم بند کرتا ہے تو وہ یہی کہہ کے بند کرتا ہے کہ ابھی ہے ٹائم رائٹ تو سبحان اللہ اتنی صحیح یہ بات ہے اور اگر انسان نے اس وقت اپنے آپ کو اٹھا لیا تو گیریں کھلتی جائیں گی اور اگر نہیں اٹھایا تو وہ کیسے تھپکی دے کے سلا رہا ہے کہ ابھی ہے ٹائم ابھی ہے ٹائم ٹھیک ہے اللہ اکبر اچھا جی جی شاہدی آپ بتائیے کہ کب تک نماز پڑھنا ضروری ہے کہ انسان یعنی کس وقت تک اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو کب تک آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے کب تک آپ کو جاری رکھنی چاہیے شاباش یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ نیند آ رہی ہے اونگ آ رہی ہے اور آپ لیکن پڑھتے جا رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا آپ کا کیا ہو رہا ہے پھر تھوڑی دیر سو جائیں پھر اٹھ کے پڑھ لیں مثال کے طور پہ اب یہ بات بہت ریلیونٹ ہے اب جب کہ رمضان انشاءاللہ تعالی آگے آ رہا ہے تو ہم کس طرح سے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے थोड़ा थोड़ा तो अभी से ही हम कोशिश शुरू कर दें कि हम तहज्जुद में उठें, और जब ताक रातें आती हैं तो हम सबकी कोशिश होती है कि अपने आप को हम जगा के रखें। अब उसके अंदर भी देखें, ऐसा नहीं है कि आप जो है ना बस बिल्कुल दीवाने हुए जा रहे हैं, इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता चल रहा आपके मुंह से क्या अल्फाज निकले, लेकिन आप लगे वो नहीं, आप फिर थोड़ी देर अलार्म लगा के और फिर सो जाएं, या किसी को कहें कि मुझे जगा दे, और फिर आप सो के ताजा दम होके फिर उठ के फिर उस वक्त पढ़ें जब आपको पता हो कम से कम कि अल्लाह ताला थकता नहीं है देने से। इसलिए इंसान अमल उतना करे जितनी उसमें ताकत है। अच्छा जी राबिया, आप बताएं कि अगर इंसान को कुरान करीम भूल जाता है तो वो क्या कहना चाहिए उसको और क्या नहीं कहना चाहिए? जी राबिया, आपको आवाज आ रही?
अस्सलाम
वालेकुम व बरकातुहु।
आवाज आ रही है मेरी?
जी जी
मुझे, मैंने असल में वो रिवीजन नहीं करी क्योंकि मुझे याद आ रहा है लेक्चर के, क्यों ये कहना चाहिए शैतान ने मुझे बुला दिया। मुझे सॉरी मैं।
अच्छा ठीक है, आप निकाल लें अपनी किताब खोल लें 451 हदीस के ऊपर,
हदीस नंबर
जी 451 पे आप निकाल लीजिए। ठीक है मेरी ना, आप बताएं अगर इंसान को कुरान भूल जाता है तो वो क्या कहे और क्या नहीं कहना चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही। तहसीन जी, अब आई आवाज जी, बताएं। अच्छा शबनम खान, आप बताएंगी? शबनम खान आप बताइए। वालेकुम अस्सलाम।
इसमें ये कहा जाएगा कि अल्लाह ताला ने मुझे भुलवा दी
है। हाँ यानी मुझे भुलवा दी गई, बस ये नहीं कि अल्लाह ताला ने मुझे भुला दी, या ये कि यानी मुझे फलां फलां आयते मुझे बस भुलवा दी गई। इस तरह से आप कह सकते हैं, ऐसा भी ना कहें कि शैतान ने भुला दी, कोई शैतान इस इन चीजों पे भी खुश होता है। यानी आप ये ना कहें कि मुझे भूल गया, बस ये कहें मुझे भुला दिया गया है। अच्छा अब मैं नसरीन आबिद आपसे पूछूंगी कि क्यों ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए कि मुझे भूल गया कुरान?
जी वो कहते हैं कि इंसान का जो है ना मादा इंसान से बना हुआ है, इंसान गफलत में तो ये मतलब उसके उसमें नहीं है, और कुरान की तादीम के लिए है कि उसको बुलवा दिया गया, यानी इंसान के अख्तियार में वो नहीं है ना, तो इसमें ये होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से बुला दी जाती है या आदमी लाइल हो जाता है, तो ये कहना नहीं चाहिए कि मैं भूल गया था।
अच्छा मैं आपको, आपकी बात कुछ सही है लेकिन मैं उसको रिफ्रेज करूंगी आप ही की बात को, कि देखें जब इंसान कहता ना कि मैं भूल गया तो एक बेअदबी है, यानी कि मुझे एक परवाह ही नहीं हुई और मैंने गफलत इख्तियार की, यानी आप एडमिट कर रहे हैं कि मैं गाफिल रहा, और कुरान से गफलत है ना बहुत एक बुरी बात है, गुनाह की बात है कि कुरान से आप गाफिल रहे, आपके सीने में कुरान था और आपने इससे गफलत इख्तियार की, तो इंसान फिर कहता है कि मैं भुलवा दिया क्या, ताजीम के तौर पर कुरान की, यानी ये कहना अच्छा नहीं है कि इंसान ऐसे मतलब धड़ल्ले से ये बात करके हाँ जी मुझे भूल गया, का मतलब यह कि मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने ठीक है, इसलिए नहीं हमें ऐसे कहना चाहिए। ये वैसे हम हमारे मुंह पे चढ़ा होता है ना, क्योंकि हम कहते हैं अच्छा मुझे भूल ही गया, क्योंकि हम आम अपनी जिंदगी में तो ऐसे ही बोल रहे थे ना, तो अब से हमने इंशाल्लाह ये पढ़ लिया तो अब हम इस तरह से बोलने से कुरान के मामले में, वैसे तो चीजों में हम कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मुझे क्वेश्चन का आंसर भूल गया, ये भूल गया, मगर कुरान की एज ए रिस्पेक्ट हम ये ना कहें कि मुझे कुरान भूल गया, इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपने गफलत इख्तियार की, तो आप ये कहें कि मुझे भुलवा दिया गया। अच्छा जी आयत से देखिए, आप बताएंगे कि कुरान कितनी तेजी से हाफ़से से निकलता है? कितनी तेजी से, जी 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 कितनी तेजी से हाफ़से से निकलता है?
جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کی مثال جو ہے ایک اونٹ کی مالک جیسی, جس طرح اونٹ رسی توڑا کے بھاگ سکتا ہے اسی طرح قرآن میں دلوں سے بھاگ جاتا ہے, اس لیے ہمیں اس کی پریکٹس کرتے رہنا چاہیے.
یعنی آپ دیکھیں کہ اونٹ کی نا ایک عادت ہے کہ وہ جو ہی آپ اس کو کھولیں گے وہ وہاں پہ نہیں موجود ہوگا, وہ فوراً ادھر ادھر ہو جائے گا. اور اسی طرح رسی توڑا کے بھی بھاگ جاتے ہیں اونٹ. تو قرآن کی سبحان اللہ ایسے مثال دی گئی, اور واقعی جو حفظ کرنے والے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کچھ دن بھی اگر آپ نہیں پڑھتے تو اللہ اکبر ایسے لگتا ہے جیسے کبھی یاد کیا ہی نہیں تھا, جیسے کبھی حافظے میں تھا ہی نہیں. یعنی اس قدر تیزی سے نکلتا ہے, شاید اور چیزیں اتنی تیزی سے نہیں نکلتی ہوں جتنی کہ قرآن تیزی سے نکل جاتا ہے. تو اس لیے اس کو باندھ کے رکھنے کی ضرورت ہے, اور باندھ کے رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. اسی لیے حافظ قرآن بن جانا بڑی بات نہیں ہوتی, یا میں نے اتنی صورتیں یاد کر لی ہیں اتنے سپارے میں نے یاد کیے ہیں, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. بات یہ کہ آپ نے جتنا بھی یاد کیا چاہے وہ تھوڑا ہی ہے مگر وہ آپ کے حافظے میں موجود ہو, یہ بات ہے اصل. اب اس کے اوپر ہم فخر کرتے جائیں جی میں تو حافظ قرآن بن گئی ہوں یا بن گیا ہوں, تو وہ اگر آپ کے ذہن میں نہیں, اگر آپ کو پڑھنے کو کہا جائے اور آپ کو نہیں آئے تو کیا فائدہ اس حافظ قرآن بننے کا؟ یہ تو الٹا ایک سوال ہوگا آپ سے قیامت کے دن کہ آپ کو یہ کیوں آپ کے ذہن سے نکلا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس چیز کے اندر بہت کیئرفل رہنا چاہیے. اور اس حدیث سے ہمیں خاص طور پہ یہ دوبارہ ایک انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ یہ صرف آپ کہیں گے نہیں نہیں میرا تو حافظہ کمزور ہے اس لیے میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے, نہیں, ہر ایک کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے یہ بات, یہ ہر ایک کے ساتھ ہے کہ یہ, کیونکہ حدیث میں آ گیا کہ جو بھی قرآن کریم کو یاد کرے گا اس کے حافظے سے ایسے ہی نکل جائے گا. اگر اس نے اس کو واچ نہیں کیا, اس کو روکا نہیں, اس کو پکڑ کے نہیں رکھا, تو اس کو باندھنا ضروری ہے, اس کو پکڑ کے رکھنا ضروری ہے. جی ایون آفٹر پیریڈز آئی ہیو پرابلم ود مسنون دعاز ٹو ریمبر. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے, باقی چیزیں بھی نکل جاتی ہیں حافظے سے, ایسی بات نہیں, مگر جتنا قرآن کے بارے میں کہا گیا نا اتنا کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا گیا. دیکھیے یہ مثال قرآن کے لیے دی گئی ہے. جی بتائیے, پوچھ لیں, اگر آپ کو جواب مجھے آتا ہوگا تو میں بتا دوں گی, ادروائز اللہ اکبر استغفر اللہ ربی. تو اس لیے ہم سب کو جو بھی چھوٹا چھوٹا کہیں حفظ کر رہے ہیں, کہیں تھوڑی بہت کوششیں کر رہے ہیں, تو اس کو ضرور باندھ کے رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ نے مرتے دم تک کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی میں آپ کو ان میوٹ کرتی ہوں. جی آپ کا کیا سوال ہے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی
ہلو.
جی جی بتائیے.
میں سوال کہنا تھا, ابھی جو حدیث کا ٹیسٹ ہوا تھا اس میں آپ نے ایک سوال تھا کہ کتنے کے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, تو اس کا تو 2 سے 2.5 فٹ کا لکھا تھا اپنی دوست, تو میں ہوں یہ بکری کا بچہ موٹا ہوا تو
نہیں نہیں میں نے تو 3 سے 4 فٹ لکھا تھا,
3 سے 4 فٹ.
اچھا جی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بات, کتنا میں نے لکھا تھا اس میں 3 یا 4 فٹ لکھا تھا, کوئی مجھے بتائے گا دوبارہ اس پہ لکھ کے؟ تین, اب مجھے ایک دم یاد نہیں ہے, اس لیے یہ لکھا تھا. ہاں جی 3-4 فٹ لکھا تھا, اس لیے یہ لکھا تھا تاکہ آپ کو بالکل آبویس ہو جائے کہ اتنا نہیں فاصلہ رکھنا, کیونکہ 3 فٹ اور 4 فٹ آپ میجر کر کے دیکھیے گا وہ اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے. اس لیے یہ میں نے آپ سے خاص طور پہ پوچھا کیونکہ بعض لوگ سترے کا اہتمام بھی کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اتنی پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں ایک میرے بچوں کی بھی مثال ہے, میں ان کو ہمیشہ سترے کا کہتی رہتی ہوں لیکن وہ اتنا فاصلہ رکھ لیتے, اس لیے یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں. میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے. اچھا جب ہم نے کلاس بھی کی تھی تو اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا بکری کا بچے کا مثال ہے اور وہ کتنے فاصلے سے گزر سکتا ہے یا بکری کتنے فاصلے سے گزر سکتی ہے, تو وہ لانگیچیوڈ میں نہیں گزرنا, اس مطلب ایسے لمبائی میں تھوڑی گزر رہی ہو, تو سامنے سے گزرے بکری کتنی بھی موٹی ہو 3-4 فٹ کے تک نہیں ہو سکتی بکری. اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ 1 فٹ تک کا یہ فاصلہ ہے, 1 فٹ تک کا آپ کو فاصلہ رکھ کے سجدے سے آگے 1 فٹ تک کا فاصلہ آپ رکھنا, ایسے بھی نہ کھڑے ہو جائیں کہ بس سترا, یہ سترا ہے تو صحیح تو کیا سترا, اور اس سے اتنی دور پیچھے جا کے کھڑے میں, تو اس لیے بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ 3-4 فٹ کا نہیں رکھنا, صحیح ہے. اچھا جی اگلا سوال میرا, انیلا آپ بتائیں گی. किन सहाबी की आवाज जो थी दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज से मिलती थी, उनको वैसी आवाज अता की गई। वालेकुम अस्सलाम।
दादा आपने मुझसे पूछा?
जी जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल।
हाँ जी, ये मूसा आशरी थे।
जी शाबाश, अबू मूसा आशरी जो थे। जी अच्छा, ये याद रखिएगा इनका नाम, क्योंकि इनकी आवाज बे इंतहा खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए इन सहाबी को कहा गया खास तौर पे कि इनकी को लहन दाऊदी में से एक, अल्लाह ताला ने एक मजामीर में से एक नजमीर दिया है, तो इसलिए इनका नाम हमारे लिए बहुत एक याद रखने की चीज़ है कि किन सहाबी की आवाज़ दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ से मिलती थी। अच्छा जी, यास्मीन सईद आप बताएंगी कि किस आवाज पे अल्लाह ताला सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, किस आवाज
सर समझ में आया सवाल आपका?
किस आवाज पे अल्लाह ताला सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं,
किस आवाज पे तवज्जो देते हैं
अल्लाह ताला किस आवाज पे सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं?
जो अल्लाह ताला आवाज पे तवज्जो देते हैं, जो जिसे कुरान शरीफ जो बहुत ही खूबसूरती के साथ और ठहर ठहर के पढ़ा जाए,
शाबाश, यानी
के साथ पढ़ जाए तो उस पर अल्लाह ताला बहुत तवज्जो देते हैं।
जी, जब नबी कुरान पढ़ रहा हो तो उनकी आवाज पे, क्योंकि सबसे खूबसूरत आवाज तो उनकी ही है, और उसके बाद फिर जो भी कुरान पढ़ेगा खूबसूरत आवाज में, तो अल्लाह ताला उसकी आवाज पे खास तौर पे सबसे ज्यादा तवज्जो अता फरमाते हैं। अच्छा जी, राफिया बेगम आप बताएंगी कि सकीनत क्या चीज होती है? सकीनत, राफिया आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या चीज होती है सकीनत?
हेलो
जी जी जी
सकीनत अल्लाह की तरफ से नाजिल होती है, जो रहमत है। सकीनत यानी कि रहमत है जो नाजिल होती है, जो सुकून।
जी
ये कह रही हैं आप?
जी ठीक है, शाबाश। यानी हम जब महफिल भी होती है अल्लाह के जिक्र की, तो हम कहते हैं अल्लाह के जिक्र की मजलिसों पे सकीनत तारी होती है। अच्छा, अब सकीनत जो तारी होती है, अब वो सकीनत क्या है? यानी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत, अल्लाह ताला की तरफ से एक सुकून, सुकून कल्ब, वो है सकीनत। ठीक है, तो अब आप ये देखें सुभान अल्लाह कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो तब भी सकीनत उतरती है, और वो इंसान को फील होती है कि ये सकीनत एक सुकून, एक रहमत, और इसकी कैफियत है। अच्छा शनाशा आप बताएंगी कि ये एक सहाबी थे सैद बिन हुजैर, उन्होंने देखा था कि आसमान के ऊपर एक छतरी है जिसमें चराग रोशन हुए हैं, तो ये क्या चीज थी कि जब वो कुरान पढ़ते थे तो ये छतरी सी करीब आ रही थी, क्या चीज थी ये?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जी
ये वही सकीनत जिसका आपने अभी जिक्र किया वो ही थी।
अच्छा, ये बिल्कुल, एक दफा वो पढ़ रहे थे तो डिफरेंट कैफियत थी, बादल का एक टुकड़ा था जो उनके घर पे साया किया था, एक दफा ये छतरी की तरह बादल था और इसमें चराग जल रहे थे, चराग टिमटिमा रहे थे, और ये क्या था? ये फरिश्ते थे जो उनकी आवाज सुनने के लिए करीब आ रहे थे। तो सुभान अल्लाह, ऐसे भी लोग गुजरे हैं जिनका कुरान सुनने के लिए फरिश्ते खुद नाजिल हो रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि अगर आप पढ़ते रहते तो ये फरिश्ते और करीब आ जाते हैं ताकि लोग भी उनको देख सकते। सुभान अल्लाह, यानी कितनी बड़ी फजीलत है एक सहाबी की कि उनके कुरान को सुनने के लिए इस तरह से फरिश्ते उतरते। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, क्योंकि जो फरिश्ते हैं उनके पास कुरान नहीं है ना, वो इंसानों का कि कुरान सुनते हैं, उनके पास तो और कुरान नहीं है कि वो कुरान की तिलावत करते रहते हैं तो वो ये इंसान के अल्लाह ताला ने उसको जो एक अपना कलाम अता किया, इसकी कदर करनी चाहिए, इसलिए फरिश्ते उतरते हैं सुनने के लिए। अच्छा नरगिस नाहिद आप बताएंगी कि कुरान के माहिर किसके साथ होंगे कयामत के दिन, जो कुरान के माहिर होंगे, जो उसके में बहुत स्किल्ड होंगे।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
जी वालेकुम अस्सलाम।
यानी कि दुश्वारी होती है कुरान पढ़ने में?
नहीं नहीं, जो कुरान का माहिर हो जाता है उसका भी कोई मकाम है दुश्वारी वाली का? वैसे आप जी बताइए, आप फिर मैं बताती हूँ। जी
जो कुरान का माहिर होता है तो उसके साथ लिखने वाले यानी के मुकर्रर फरिश्ते होते हैं, ये है इसका।
आपको बताती हूँ। अच्छा वो क्यामत के दिन, देखिए इन्होंने भी ये बात की ना कि जो अटक के पढ़ने वाला या जो इतना स्किल्ड नहीं हो इस फील्ड में, उसका तो सबको ही पता है कि उसके लिए दुगना अजर है, ये सबको पता है, सबने याद किया था। तो हम फिर मुझे लगता है उसी मकाम पे रहते हैं कि इससे हमें दुगना अजर मिल रहा है, क्या जरूरत है ज्यादा माहिर बनने की। लेकिन आपको पता है जो माहिर होगा यानी कुरान के में, अब आप तजवीद पढ़ते हैं, अब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, अब आप इतना पढ़ते हैं इसको कि आप उसके माहिर हो जाते हैं, तो पता है कितना ऊंचा मकाम है कि उन फरिश्तों के साथ जो जो बहुत मुकर्रब फरिश्ते हैं, जो जो बहुत इज्जत वाले फरिश्ते हैं, जो कातिब फरिश्ते हैं, उनके साथ होगा, उनके साथ होगा। अब ये इतनी बड़ी बात है कि इंसान इसकी इसकी ख्वाहिश करे और इसके लिए कोशिश करे, ना कि हमेशा इस लेवल पे रहने की कोशिश करे कि डबल तो मिल ही रहा है तो फिर क्या जरूरत है। देखिए वो उनके लिए जो एक बेचारा नहीं इसको आ रहा है, मिसाल के तौर पे कई बूढ़े लोग होते हैं, इतने जयीफ होते हैं, अपनी बेचारे कोशिश कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, मगर जाहिर है जिंदगी भर से एक तरह से उन्होंने पढ़ा हुआ है, इतने नहीं स्किल्ड हो पाते, तो ठीक है उनको दुगना अजर मिलेगा क्योंकि वो कोशिश जो कर रहे हैं उस कोशिश की वजह से उनको मिल रहा है। अब हम जैसे लोग भी बैठ जाएं, दुगना तो हमें मिलना ही है इसलिए हम इसी लेवल पे रहें, ये तो सही बात नहीं है। कितना बड़ा मुकाम है ये, यानी मुकर्रम फरिश्तों के साथ, इज्जत वाले फरिश्तों के साथ, मुअज्जज फरिश्तों के साथ इंसान का मकाम हो जाए, लिखने वाले फरिश्तों के साथ, कितनी बड़ी इज्जत की बात है, लेकिन इसकी हम कोशिश नहीं करते क्या? तो वो डबल अजर वाली बात तो वो नीचे लेवल पे रह जाती है, ये बहुत ऊंचा लेवल है, क़यामत के दिन उनके साथ बैठे होंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अच्छा जी जी यास्मीन इकबाल, आप बताएंगी कि क्या एक माहिर कारी जो है वो अपने शागिर्द के सामने या अपने से कम जो कोई कारी है उसके सामने कुरान पढ़ के सुना सकता है?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम।
इसके लिए अफजल है अगर वो जो माहिर कारी है वो अपने से कमतर को भी पढ़ के सुना सकता है, ये अफजल है।
अच्छा ठीक है। नहीं इसमें फजीलत की बात नहीं है, इसमें ये है कि हाँ ये है जरूर कि अपने से कम मर्तबे वाले के सामने भी वो तिलावत कर सकता है, इसकी इजाजत है, और ये अल्लाह सल्लम की सुन्नत से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर है उनके सहाबा तो उनके स्टूडेंट भी हैं और उनके सहाबा तो उनसे कम दर्जे के हैं, तो उनके सामने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के सुना सकते हैं तो हमें क्या मुश्किल है कि हम किसी के सामने, हमको मैं तो इतनी माहिर हूं, अब मैं टीचर हूं, अब मैं अपने स्टूडेंट के सामने क्यों पढ़ के सुनूं, उसको क्यों सुनाऊं, या ये मेरे से कम दर्जे की टीचर है, एक टीचर सोचती है कि क्यों सुनाऊं, मैं तो खुद टीचर हूं, अब लोग क्या समझेंगे कि इसको कुछ आता नहीं कि ये दूसरे को सुना रही, ये बात नहीं। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आर महसूस नहीं की, इसमें उन्होंने कोई तकब्बुर नहीं किया कि जो है ना मैं क्यों सुनाऊं किसी और को, मैं तो जिब्राइल अलैहि सलाम को सुनाता हूँ, तो अब मैं ये अपने सहाबा को, दो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि क्या ये मकाम है कि ये अपने सहाबी को कुरान पढ़ पढ़ के सुना रहे, नहीं ये हमें हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आर महसूस नहीं की, कितनी आजजी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। और यही बात हम सबको सीखनी चाहिए कि अगर हमें कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, अपनी अपने से कम भी कोई है इल्म में तो हम उससे भी कोई बात पूछ लेते हैं या सीख लेते हैं, हमारे बच्चे से भी हम कोई बात सीख लेते हैं, तो इसमें कोई आर की बात नहीं, यानी कि तुम अब मुझे बताओगे नहीं, अगर वो बात सही कर रहा है तो हमें बेइज्जती महसूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल दूसरे को सुनाना चाहिए ताकि आप उससे अपनी तस्दीक कर सके, हमारे जैसे लोगों का क्या मकाम है आप मुझे बताएं, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना सकते हैं तो हम जैसे लोग किधर से अपने आप को कुछ समझने लगें कि हम नहीं किसी को सुनाएंगे, और बाज लोग कहते हैं नहीं जी हमें तो इतनी शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी हो गई इसको अभी तक कुरान ही नहीं आता, और उन सारे लोगों के लिए ये एक बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि बहुत सारे एल्डरली लोग होते हैं या बहुत सारे एल्डरली नहीं भी होते, मतलब खवातीन होती हैं, उनको अगर कहा जाए ना कुरान सुनाने को तो कहती नहीं अगर हम सुनाया तो फिर हमें तो इतनी शर्म आती है, हम कैसे सुनाएं, वो शर्म इसलिए आती कि हमें अच्छी तरह पढ़ना नहीं आता, तो इसमें कोई आर नहीं महसूस करनी चाहिए, कोई आपकी बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती इसमें है कि अगर आपको नहीं आता और आप फिर भी ऐसे ही बैठे हैं सिर्फ ये कि क्योंकि आपका तकबर इतना ज्यादा कि अगर मैंने सुनाया तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए, अब ये इसमें हर वक्त ऐसे बैठे रहना कि मैं चाहे गलत ही हूं लेकिन मैं किसी के सामने सुनाऊंगी नहीं, ये राइट नहीं है। इवन किड्स फील शाय इवन इफ दे रीड गुड, दैट्स डिफरेंट। किड्स की तो देखें बिल्कुल अलग बात है, वो तो वैसे भी शाय होते हैं बड़ों के सामने कोई बात करने से, उनको कहेंगे सलाम करो तो वो भी शाय होते रहेंगे, वो उसके अंदर वो बात नहीं कि उनके तो कोई तकब्बुर है या कुछ है, लेकिन हमारी खवातीन के अंदर जरूर ये बात होती है कि वो इस वजह से नहीं सुनाती कि लोग क्या कहेंगे कि इसको आता नहीं है, तो क्या ये कोई आर महसूस करने वाली बात है, बेइज्जती महसूस करने वाली बात है? सारी जिंदगी इंसान को तालिबे इल्म रहना चाहिए, तालिबे इल्म, कि इंसान इल्म के लिए तलब करने वाला रहे। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं वो भी बता देती हूँ। अभी हम यहाँ तक ही करते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया, इंशाल्लाह ताला हम क्लास करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे। अच्छा, एक तबर्रुक के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी आपके पसीने से आपके बालों से तबर्रुक लिया जाता था, और उसके बाद भी आज तक भी वाकई अगर पता है ऑथेंटिक है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक है, मुंह मुबारक का कहते हैं, तो फिर हाँ उसे लिया जा सकता है, लेकिन कोई ऑथेंटिक बात आज तक मालूम नहीं है कि ये वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह तआला नेक्स्ट टाइम हम इसको मुकम्मल करके मसाइल किताबुल जुमा इंशाल्लाह तआला हम फिर वो कर लेंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।